सभी लोग लिविंग रूम में बैठ चुके थे। ज्ञान कपूर ने घड़ी की ओर देखा और शांत स्वर में बोला, न्यारा, हमें लेट हो रहा है। उसका अंदाज बिल्कुल वैसा ही था जैसा कोई सामान्य पति अपनी पत्नी से चलने के लिए कहता है, सीधा, सहज और अधिकार भरा। कमरे में मौजूद किसी भी व्यक्ति को उसके इस व्यवहार में कुछ भी असामान्य नहीं लगा, क्योंकि सबके मन में यही था कि वे दोनों पहले से ही साथ रह रहे हैं। मगर न्यारा के लिए ये सब इतना आसान नहीं था। ज्ञान अब सिर्फ उसका बॉस नहीं, उसका पति बन चुका था, और वो उसके साथ इतनी सहजता से पेश आ रहा था कि उसकी यही सामान्यता न्यारा को भीतर से विचलित कर रही थी। उसकी परेशानी ये थी कि वो अपने मन की उलझन किसी से कह भी नहीं सकती थी। ना तो कोई उसकी बात सुनने को तैयार था और ना ही किसी को उसकी चुप्पी में छिपा तूफान दिखाई दे रहा था। तभी निया ने धीरे से न्यारा का हाथ दबाते हुए कहा, थोड़ी देर और रुक जाओ ना। सोफे पर उसके पास बैठी न्यारा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो गहरे विचारों में खो गई। ज्ञान ने उसकी आंखों में उभरती उलझन देख ली और नरमी से पूछा, क्या हुआ? न्यारा ने खुद को संभालते हुए कहा, वो निया दीदी कह रही थी कि अभी रुक जाऊं, आपको काम है तो आप चले जाइए, मैं शाम तक आ जाऊंगी। ज्ञान ने बिना कुछ कहे अपना फोन निकाला। उसने ऑफिस में कॉल कर दिया और सख्त लेकिन संतुलित आवाज में कहा कि उसकी जगह किसी जूनियर को भेज दिया जाए और जरूरी तारीख ले ली जाए। फोन रखते हुए उसके चेहरे पर स्पष्ट था, वो अच्छी तरह जानता था कि उसके मॉम डैड न्यारा को यूं अकेला नहीं जाने देंगे, और सच तो ये था कि वो खुद भी उसे इस हालत में छोड़ना नहीं चाहता था। फरीद खान काफी देर से गौर कर रहा था कि मियां बीवी रेहान और सादिया के बीच कुछ तो ठीक नहीं है। माहौल भले ही सामान्य दिख रहा था, लेकिन उनके हाव भाव बहुत कुछ कह रहे थे। कॉफी का कप रखते ही रेहान अचानक बाहर की तरफ चला गया। सादिया भी चुपचाप टेबल से उठते। रेहान का इस तरह नाराज होकर चले जाना सादिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। उसके चेहरे पर साफ मायूसी झलक रही थी। फरीद खान ने धीमे स्वर में पूछा, कोई प्रॉब्लम है क्या इन दोनों में? मैंने कल पार्टी में भी नोट किया था, रेहान कुछ अलग सा था, जैसे सादिया से खफा हो। रेहाना बेगम ने हल्की सांस लेते हुए जवाब दिया, पति पत्नी है दोनों, थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, खुद ही ठीक हो जाएंगे। उन्होंने जानबूझकर असली वजह नहीं बताई, कुछ बातें घर की दीवारों में ही रह जाएं यही बेहतर होता है, शायद यही सोचकर वो चुप रहीं। उधर लॉन में नूर वहीं खड़ी थी। रेहान बाहर जाने के लिए घर से निकला। तुम यहाँ हो? रेहान ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, जैसे अभी अभी की नाराजगी को छुपाने की कोशिश कर रहा हो। हाँ, नूर ने संक्षेप में जवाब दिया। तुम्हें यूनिवर्सिटी नहीं जाना? रेहान ने घड़ी पर नजर डालते हुए नूर से पूछा। अभी तो बहुत जल्दी है, थोड़ी देर में चली जाऊंगी, नूर ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। रेहान ने उसकी तरफ गौर से देखा, जल्दी तैयार हो जाना, आज तुम्हारा पहला दिन है, तुम्हें लेट नहीं होना। रेहान कुछ देर रुककर फिर आगे बढ़ गया, लेकिन नूर वहीं खड़ी रह गई। इधर सुल्ताना बेगम आकर इकबाल के पास बैठ गई। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। क्या हुआ, तुम परेशान लग रही हो? इकबाल ने पूछा। सुल्ताना बेगम ने धीमे स्वर में कहा, क्या हमने नूर को वहां छोड़कर ठीक किया? अब जमीला उसे हर जगह बदनाम कर देगी। उनका इशारा जमीला फूफी की बेटी की तरफ था। उन्हें डर था कि हालात का गलत फायदा उठाकर नूर की इज्जत पर उंगली उठाई जा सकती थी। इकबाल कुछ पल चुप रहे। उन्हें भी अंदाजा था कि बात मामूली नहीं है। इस घर की खामोश दीवारों के पीछे बहुत सी बातें धीरे धीरे उलझती जा रही थी और हर कोई अपने अपने डर के साथ जी रहा था। हमने अच्छा किया कि हम नूर को साथ लेकर नहीं आए, इकबाल ने गहरी सांस लेते हुए कहा। अगर हम उसे साथ ले आते तब तो जमीला की बातों पर पूरे खानदान वालों को यकीन हो जाता कि नूर ने सच में कोई गलती की है, इसलिए हम उसे वापस ले आए हैं। तो क्या आप इसीलिए उसे वहां छोड़ आए हैं? सुल्ताना बेगम ने मायूसी से पूछा। दुनिया के डर से? ये कैसी बातें करती हो तुम सुल्ताना? इकबाल ने हल्का सा नाराज होते हुए कहा। मुझे रेहान पर पूरा यकीन है। वो नूर की हिफाजत के बारे में जितना सोचता है उतना शायद ही कोई सोच सके। यही सोचकर तो मुझे भी तसल्ली है। सुल्ताना बेगम खामोश हो गई, मगर उनके दिल में बेचैनी अब भी बाकी थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, फैसला चाहे जैसे भी लिया गया हो, सही है या गलत, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। नूर को यूनिवर्सिटी जाना था। सादिया के दिमाग में सुबह से ही एक प्लान चल रहा था। वो चाहती थी कि किसी तरह अरमान और नूर साथ में जाएं। उसी समय अरमान नीचे आया। उसने बताया कि रेहान भाई की एक जरूरी फाइल घर पर रह गई है, इसीलिए वो लेने आया है। रेहान ने ही उसे फोन करके फाइल मंगवाई थी। सादिया ने तुरंत मौका पकड़ लिया। अरमान, तुम ऑफिस जा ही रहे हो तो नूर को भी छोड़ते हुए चले जाना, उसने बनावटी सादगी से कहा। मैं लेट हो जाऊंगा, रेहान भाई का गुस्सा तो आपको पता ही है, अरमान थोड़ा झिझका। कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो चलता रहता है, मैं संभाल लूंगी, सादिया ने मुस्कुराकर कहा। इतने में फैजान भी वहां आ गया। सादिया ने झट से अरमान के हाथ से फाइल ली और फैजान की तरफ बढ़ा दी। फैजान, तुम ऐसा करो, रेहान की फाइल और टिफिन दोनों ऑफिस पहुंचा देना, अरमान नूर को छोड़ देगा। अरमान और नूर साथ निकल गए। फैजान ने चाहकर भी कुछ नहीं कहा। वो समझ रहा था कि सादिया जानबूझकर दोनों को साथ भेज रही है। ये खेल अगर उल्टा पड़ा तो सबसे ज्यादा नुकसान सादिया का ही होगा और कहीं ना कहीं उसका नाम भी बीच में आ सकता था। लेकिन उसे सुनने और चुप रहने की आदत थी, इसलिए वो फाइल और टिफिन लेकर ऑफिस चला गया। उधर ऑफिस में रेहान अरमान का इंतजार कर रहा था, लेकिन दरवाजा खुला और अंदर फैजान आया। रेहान ने हल्का सा भौहें चढ़ाई। तुम, अरमान कहाँ है?
फैजान ने सहज स्वर में जवाब दिया। भाभी ने बताया कि आप सुबह नाश्ता किए बिना ही निकल आए थे, इसीलिए लंच भेजा है। फाइल भी यही थी तो मैं ले आया। रेहान ने टिफिन की तरफ देखा, फिर फैजान की ओर। अरमान कहाँ रह गया? घर पर नहीं था क्या? मैं उसी का इंतजार कर रहा था। वो नूर को यूनिवर्सिटी ड्रॉप करने गया है, अगर कोई काम हो तो मुझे बता दीजिए, फैजान बोला। रेहान के चेहरे पर हल्की सी तंज भरी मुस्कान आई। फूलों की डेकोरेशन का काम नहीं है, ये ऑफिस का काम है, रेहान ने फैजान से कहा। फैजान चुपचाप सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। उसे वैसे भी सुनने की आदत थी और आज शायद उसे फिर कुछ सुनना था। न्यारा के मॉम डैड की शाम के मॉम डैड से लंबी बातचीत हो चुकी थी। सब बातें उम्मीद के मुताबिक आगे बढ़ रही थी। तय हुआ कि कुछ ही दिनों में शाम के माता पिता शहर आएंगे और तभी रिश्ते को औपचारिक रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। दोपहर तक सब लोग साथ बैठे रहे। हंसी मजाक, हल्की बातचीत और भविष्य की योजनाओं के बीच लंच हुआ। फिर विदा लेने का समय आ गया। तो ठीक है नरेश, अब हम चलते हैं, अजय कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ हाँ, जल्दी ही रिसेप्शन की तारीख तय करते हैं, फिर मिलते हैं, नरेश ने उत्साह से जवाब दिया। दोनों पुराने दोस्तों की आंखों में खुशी साफ छलक रही थी। सुनीता और मंजू भी खुश थी, हालांकि उनके मन में हल्की सी चिंता भी थी। आखिर बात एक तलाकशुदा बेटी के नए रिश्ते की थी, माँ का दिल पूरी तरह निश्चिंत कैसे हो सकता है? उलझन अगर सबसे ज्यादा थी तो वो निया के मन में थी। नरेश और मंजू ने उसे कुछ दिन और अपने पास रोक लिया था। रिश्ता लगभग तय हो चुका था, अब बस इंतजार था उस दिन का जब शाम के मॉम डैड आकर औपचारिक रूप से शादी की बात पक्की करेंगे। निया ने भी अपने माता पिता से साफ कह दिया था, अगर शाम के मॉम डैड को मेरे तलाकशुदा होने से कोई आपत्ति नहीं है तो मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। उसकी आवाज में संकोच भी था और एक नई शुरुआत की चाह भी।
उधर न्यारा ज्ञान कपूर के साथ उसके मॉम डैड के घर से वापस आई। आज वो ज्ञान के साथ उसके घर जाने वाली थी, फ्लैट में नहीं बल्कि उस नए घर में जहां आज उनका गृह प्रवेश था। एक नई शुरुआत, नए रिश्तों की आहट, और साथ ही ये भी तय हुआ कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो रिसेप्शन की तैयारियां भी जल्द शुरू कर दी जाएंगी।